ओम शांति।
आशाओं के दीपक है आप, बुझते दिए की ज्योत है आप, करते हैं रोशन ज्ञान किरणों से हर दिल को आप। ऐसे है हमारे क्रीना बहन। आप लास्ट 31 सालों से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हैं और 22 सालों से ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने अन्य कई विदेशों में भी अपनी सेवाएं प्रदान की हैं, जैसे कि अमेरिका, इंग्लैंड, दुबई, जापान। इसके साथ साथ आप बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग की फैकल्टी हैं और इसके अंतर्गत आपने कई सारी कंपनीज में प्रोग्राम्स भी कराए हैं, जैसे कि सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट। तो ऐसे ही आज हम ऐसी पर्सनालिटी से सुनेंगे। मैं बहनों को अनुरोध करती हूं कि उनका पुष्पगुच्छ देके स्वागत करें।
ओम शांति। So I'm very happy that I have this chance after Sister Radhika's talk, because you all have become so energetic, so much full with the energy that Radhika Ben just shared with you all. I could feel the vibrations in the air. The topic now that we are going to go through is contentment. Contentment in the heart is happiness in the heart. But before we go into the subject of contentment, we just ask ourselves for a second within ourselves, just put this question, sitting here right now in this chair, do I feel the sense of contentment? Or I have come here again, seeking for something, to fulfill some desire. Even if you're contented, you can come here. But it's just a checking that whether I've come here, I'm sitting here with the sense of contentment, or I've come here to seek something or fulfill some or the other desire. Before we go further into the subject of contentment, I would like to ask you, what makes your life 100? What do you think is that most valuable ingredient of life that makes it 100? Attitude. Thank you. Suppose we have these alphabets and then there are the digits along with the alphabets. तो हम देख रहे हैं कि alphabets है, उसके साथ जो numbers भी दिए हैं, digits भी दिए हैं। तो जैसे शब्द लिया है skills, क्योंकि आजकल हम देखते हैं हर एक व्यक्ति skills के पीछे बहुत ज्यादा महत्व और time दे रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि जितना मैं अपने skills को बढ़ाऊंगा, अपनी योग्यताओं को बढ़ाऊंगा, उतना मुझे opportunity, अवसर मिलता जाएगा जीवन में, right? ये बात आज हो रही है ना, तो इसलिए कितने प्रकार के कोर्सेज शुरू हो गए। पहले होते थे क्या? बिल्कुल नहीं होते थे। अभी तो इतने प्रकार के कोर्सेज हैं और हर एक चाहते हैं मैं 5 करूं, 6 करूं, 7 कोर्सेज करूं, क्योंकि महत्व वो है मन में कि मुझे अपनी योग्यताओं को बढ़ाना है। तो अगर हम स्किल्स के नीचे जो डिजिट्स है उसको हम कैलकुलेट करें, टोटल कितना होता है, तो कितना होगा बताएंगे? कितना हो रहा है? 82, बराबर। अब हम दूसरा लेते हैं, नॉलेज। नॉलेज भी बढ़ानी पड़ती है दिन प्रतिदिन। अब टेक्निकल नॉलेज कहो, कोई भी प्रकार की नॉलेज कहो, वो भी आज बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए एजुकेशन भी इतना इंपॉर्टेंट हो गया है। पहले इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन माना एटलीस्ट लेडीज के लिए तो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं था, और आज देखो तो नॉलेज इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं ना कि अगर नॉलेज नहीं होगा तो यू विल लूज योर गेम, है ना। थोड़ा भी ज्ञान की कमी अगर हो गई तो आप वो वो छूट जाएंगे वहां पर, आपको सक्सेस प्राप्त नहीं हो सकता है। तो इसीलिए अगर हम ये डिजिट्स को काउंट करें तो कितना होता है, 100 नहीं हुआ है ना, ओनली 96। अच्छा, फिर हम देखें हार्ड वर्क बहुत जरूरी है, मेहनत बिगैर तो कोई फल नहीं मिलता है, और मेहनत तो रात दिन एक करके करते हैं तब जाके कितने सक्सेसफुल होते हैं, तो हार्ड वर्क भी कोई कम बात नहीं है। लेकिन हार्ड वर्क का भी कैलकुलेट करें तो कितना होता है, 98, तो भी कम पड़ गया, वो भी 100 नहीं है। तो जैसे आपने बताया एटीट्यूड, उसकी गिनती करो, एग्जैक्टली 100। डेस्टिनी काउंट करें तो पता चले, हाँ काउंट करेंगे तो कितना आता है डेस्टिनी के लिए, 4 + 5 = 9, 9 + 19 = 20, 20 + 9 = 14 + 25 कितना हुआ, मुझे नहीं लगता 100 हुआ है ना, वो भी 100 नहीं होता है। परफेक्ट एटीट्यूड 100, क्योंकि आप देखिए जो एटीट्यूड आपके अंदर होगा, माना मनोवृत्ति जो आपके अंदर है, उसी से आपकी एक मन की स्थिति बनती है। एक मन का एक पूरा, अब हम कहते हैं एक एनवायरनमेंट तैयार हो जाता है, और जो मन की स्थिति बनती है ना, उसी अनुसार फिर आपका और आगे विचार चलेगा। विचार का असर माना प्रभाव जो है ना, वो एटीट्यूड से ही होता है, लेकिन एटीट्यूड से स्थिति पर और स्थिति से विचार पर। तो जो स्थिति, मन की स्थिति बनाने के लिए हमें कहां पर ध्यान देना पड़ेगा, अपने एटीट्यूड पर, मैं कौन सी वृत्ति से कार्य कर रही हूं। तो अगर हम थोड़े कोट्स देखें, क्योंकि दो ही प्रकार के एटीट्यूड्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एटीट्यूड, एक होता है नेगेटिव एटीट्यूड। फॉर एग्जांपल, किसी ने एरोप्लेन बनाए, पॉजिटिव एटीट्यूड, लेकिन साथ में जिसने पैराशूट का सोचा उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव एटीट्यूड, क्योंकि ये सोचा ना कि अगर प्लेन गिर गया तो कुछ हो गया तो। जबकि भारत में सबसे पहले हम देखें, अजमेर में अगर आपने वो मॉडल देखा हो स्वर्ग का, तो उसमें पुष्पक विमान दिखाते हैं कि उस समय जो लोग रहते थे वो पुष्पक विमान में उड़ते थे, उनका तो कभी एक्सीडेंट नहीं होता था, और उस समय कोई पैराशूट जैसी चीज भी नहीं थी। तो इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट है कि हम सोचें कि हमारा एटीट्यूड इस समय कोई भी कार्य करने के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड अगर है तो पॉजिटिव रिजल्ट को आप ही खींचेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ती है, आप ही खींचता है। परिस्थिति भले कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, पर आपको मेहनत महसूस नहीं होगी। ये एग्जाम्पल आपको पता है ना, स्वामी विवेकानंद जी का, जब वो शिकागो गए, किसको पता है, हाथ खड़ा करें, आकर के समझाएंगे 2 मिनट, एक माइक मिल सकता है एक्स्ट्रा, यहां नीचे रख दीजिए प्लीज, आइए ना, जिनको पता है और वो 2 मिनट में सुना सकते हैं, आइए प्लीज, जो सुना सकते हैं आइए। तो शिकागो गए, उसके बाद क्या हुआ बताइए।
ओम शांति। तो जो पॉजिटिव एटीट्यूड था, उसमें जो धर्म पुस्तक है सभी रखी गई थी, उसमें गीता सबसे नीचे थी।
अच्छा,
तो कोई ने ऐसे कमेंट की, आपका धर्म पुस्तक तो सबसे नीचे है ना, तो उसको कोई रिकॉर्ड नहीं किया गया, तो उन्होंने बोला कि रिकॉर्ड नहीं है लेकिन ये सबके नींव में है,
सबकी नींव है,
हाँ
फाउंडेशन,
अगर उसे हटा दोगे तो सभी गिर जाएगी, तो वही पॉजिटिव एटीट्यूड था।
कितनी अच्छी बात सुनाई। कोई भी चैलेंज आप प्लीज प्लीज बताइए, प्लीज बताइए। थैंक यू।
स्टोरी और आगे चलती है।
हाँ जी चलाइए।
वो किताब जो अपनी है गीता, सबसे ऊपर रख देते हैं, तो सब बोलते हैं ये इनकी सब बड़ी से बड़ी किताब है इसलिए इसके ऊपर रखी गई है।
अच्छा।
फिर किसी ने लेके उसको बीच में रख दी तो बोला ये दोनों तरफ इनकी बाहें फैलाई हुई है और इसलिए इसकी कीमत है।
अच्छा जी।
और दूसरी बड़ी बात ये हुई थी, विवेकानंद ने जब प्रवचन किया सारे लोग बहुत इंप्रेस हो गए थे, तो वहां से फिर एक लड़की उठ के आई और उसने कहा मुझे आपसे शादी करनी है। तो विवेकानंद जी ने पूछा कि आपको क्यों मुझसे शादी करनी है, उसने तुरंत जवाब दिया अपने दोनों से अच्छा बेटा होगा। तो बोला उसमें जरूरत क्या है, मैं ही आपका बेटा हूं। इमीडिएटली उसने जवाब दे दिया और आप मेरी माँ है।
और भी एक
स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स।
हाँ जी। एक और कहानी है उनकी कि जब वो शिकागो गए तो उस समय बहुत ठंड थी और उनकी बैग वगैरह सब चोरी हो गई। अब कुछ भी नहीं था उनके पास, अब कैसे वो वहां पहुंचेंगे पार्लियामेंट्री सेशन में, कैसे पहुंचेंगे, कुछ भी विचार ना करते जैसे नींद आई ना सो गए पेवमेंट पे। अब आप सोचो कैसे वो पहुंचेंगे वहां। पर एक ओल्ड लेडी ने उनको देखा और उनको विचार आया कि ये कोई इंडिया से अच्छा व्यक्ति लग रहा है, तो उनको उठा के अपने घर लेके गई और फिर दूसरे दिन पूछा भी कि आज आपको कहीं जाना था, तो तुरंत उन्होंने कहा ऐसे भी नहीं सुबह उठ के अरे आज तो मुझे जाना था, अभी क्या होगा कैसे होगा, कुछ नहीं बोला। उन्होंने सामने से पूछा आपको आज कहीं जाना था, तो बोला हाँ ऐसे था, तो वही खुद उनको वहां लेके गई। आप देखिए उसका रिजल्ट कैसा रहा कॉन्फ्रेंस का। तो कितना भी चैलेंज उनको आया एक विचार भी उन्होंने व्यर्थ नहीं चलाया, वो पॉजिटिव एटीट्यूड जैसा था वैसा बना रहा। तो आपे ही पॉजिटिव रिजल्ट को वो खींच लेता है। अपनी लाइफ ही एटीट्यूड्स का एक रिफ्लेक्शन है। हमारे देश में और बाहर भी कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने लाइफ से अपनी एटीट्यूड्स दिखाई है। हो सकता है हमने केवल कुछ किताबें देखी हो, कोई ऑथर्स ने ऐसे लिखी हो, ऑटोबायोग्राफी हो, या कहीं ना कहीं उसकी लोगों ने पहचान कराई हो, लेकिन वास्तव में और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, शायद इंडिया के गांव में भी है, जो केवल अपने गांव को भी अपने एटीट्यूड से अपनी लाइफ को रिफ्लेक्ट करा रहे हैं आज। और इसलिए इट इज नॉट अ वेरी अनकॉमन थिंग। हो सकता है तो मैं भी इसको आज इस प्रकार से कर सकती हूं। सुबह का सेशन याद है ना कि हम हरेक कौन है, आत्मा, और आत्मा के अंदर बहुत खजाने हैं। तो हम अगर कोई भी थॉट लेते हैं अपने लिए और सिंसियरली अपने को उसके लिए अप्लाई करते हैं तो क्यों नहीं हो सकता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो इसीलिए हम अगर इस पर सोचें माय लाइफ इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ माय एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड एक चेन रिएक्शन पैदा करता है। अभी मेरे पास जो एग्जाम्पल है वो शायद एक नेगेटिव रिएक्शन का एग्जाम्पल है, लेकिन फिर भी इसे हम समझ सकते हैं। और आपने सुना भी होगा अकबर बिरबल की वो कहानी कि जब अकबर ने बिरबल को पूछा कि हमारे राज्य में कितने ऐसे हैं जो बहुत सत्यवादी है, तो बिरबल ने कहा आपको बताता हूं। फिर उसी रात को उन्होंने एक कुंड जैसे बनाया छोटा सा और फिर सारे राज्य में सबको बता दिया कि आज रात को सभी को आकर के एक लोटा दूध डालना है। तो बस सभी आने लगे, उसमें एक व्यक्ति को विचार आया कि मैं ना एक लोटा पानी डाल देता हूं, क्यों बाकी तो सब दूध ही डालने वाले हैं, कैसे पता चलेगा मैंने पानी डाला। लेकिन जैसे उसने वो सोचा वही सोच हरेक के पास चली गई और हरेक ने क्या किया, सुबह देखा तो पूरा ही पानी से भरा हुआ था, बिल्कुल दूध था ही नहीं। तो एक के विचार से एक चेन रिएक्शन पैदा हो गई और सारा कुंड पानी से भर गया। तो फिर बिरबल ने अकबर को क्या बताया कितने सत्यवादी होंगे, वरना होते हैं ऐसा नहीं, लेकिन अगर एक भी नेगेटिव ज्यादा स्ट्रांग हो गया ना तो इट कैन इन्फ्लुएंस मेनी मेनी अदर्स. तो ऐसा ही अगर एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी स्ट्रांग हो ना तो इट कैन क्रिएट अ चेन रिएक्शन. एक बार बहुत एक आइलैंड पर बहुत सारे बंदर रहते थे, तो वो आइलैंड पे ना आलू बहुत उगते थे. तो सभी बंदरों को आलू खाने का वो बहुत शौक था, इसलिए हर एक बंदर ऐसे आलू खाते रहते थे. एक बार एक बंदर ने पता नहीं कैसे उसकी सोच चली, तो उसने आलू लेकर के पानी की तरफ गया और पानी में धोने लगा वो, और फिर वो आलू खाने लगा. उसको देख करके सारे बंदर धो के ही आलू खाने लगे. तो मना ये जो चेन रिएक्शन की बात है ना, ये कितनी रियल है. हम यहां सोचेंगे, घर जाते हैं, बाकी तो कोई नहीं जानता है, हम कैसे कर पाएंगे, इट इज सो डिफिकल्ट. पर आप करने लगेंगे ना, डेफिनेटली इट विल क्रिएट अ चेन रिएक्शन कोई ना कोई रीति से. एक जन फुल नॉलेज लेगा, एक व्यक्ति शायद लोटा भर के लेगा, एक जो है अंचली मात्र लेगा, लेकिन कोई ना कोई प्रकार से इफेक्ट जरूर होगी. एटीट्यूड नॉट एप्टीट्यूड. आपके अंदर कितनी योग्यताएं हैं उससे भी अधिक एटीट्यूड, कौन सी मनोवृत्ति से आप कार्य करते हो, डिटरमिन्स योर एल्टीट्यूड. आपकी जो बढ़ाई है, जिसको हम कहेंगे आप कितने रियल सेंस में बड़े हो, वो आपके एटीट्यूड से मालूम पड़ता है. नो मैन फेल्स इफ ही डज हिज बेस्ट. इसमें एक एग्जाम्पल मुझे आता है अब्राहम लिंकन का, नो मैन फेल्स इफ ही डज हिज बेस्ट. अ पॉजिटिव एटीट्यूड इज नॉट अ डेस्टिनेशन बट इट इज अ वे ऑफ लिविंग. तो अब्राहम लिंकन का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, जॉब भी उसका छूट गया, लेजिस्लेचर में भी वो उसको मना स्थान नहीं मिला, फिर उसने सोचा चलो बिजनेस शुरू करते हैं, उसमें भी वो फेल हो गए. फिर उनकी पत्नी जो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, वो भी कोई ना कोई डिजीज के कारण से उनकी मृत्यु हो गई. फिर उनको नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, क्योंकि हो सकता है कि उनकी वाइफ उनकी रियल सपोर्ट भी हो थी. फिर वो इलेक्शन में खड़े होने का सोचा, वहां भी पहले तो टिकट ही नहीं मिली, फिर बाद में उन्होंने इलेक्शन भी मना लूज किया, फिर बाद में उन्होंने फिर नॉमिनेशन ट्राई किया, वहां भी उनको नहीं मिला, फिर लैंड ऑफिसर के पोस्ट को अप्लाई किया, वो भी नहीं मिली. आप सोचो अगर हम उसकी जगह होते, इतने सब फेलियर्स होते तो हम क्या सोचते अपने लाइफ के बारे में. और फिर सेनेट के लिए कॉन्टेस्ट में खड़े हुए, वो भी खो दिया. उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, वो भी नहीं मिला. 2 सालों के बाद जब ऐसा समय अमेरिका में आया कि जब कोई भी उस समय ऐसे योग्य नहीं था जो क्राइसिस को संभाल सके, उस समय सबने अब्राहम लिंकन को ही चुना. और ये उन्होंने बचपन में ही देख लिया था कि एक समय आएगा जब मैं स्टेज पर खड़ा होऊंगा और मैं स्पीच दे रहा होगा और बाकी सब खड़े होकर तालियां मार रहे होंगे. केवल एक ये संकल्प उनकी वृत्ति में थी, वृत्ति बन गया था. तो भले कितनी भी बार फेल हुए ना, पर उनकी वृत्ति को कभी ठेस नहीं पहुंची. उनको पक्का विश्वास था कि ये दिन आने वाला है. और दूसरा, फेलियर की वृत्ति भी नहीं थी. कोई भी चीज नहीं मिली या नहीं कर सके, सीधा हम क्या देते कह देते हैं, आई हैव फेल्ड. पर ऐसे कई लोग हैं जो कभी नहीं सोचते हैं कि मैं फेल हुआ हूं. जैसे एडिसन भी, थॉमस एडिसन ने जब बल्ब बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट शुरू किए तो 2000 एक्सपेरिमेंट किए, बल्ब भी नहीं बना. और फिर जो एक्सपेरिमेंट किया उससे बल्ब बन गया. तो उसको किसी ने पूछा कि आपको लगा नहीं, बुरा नहीं लगा इतने एक्सपेरिमेंट किए फिर भी बल्ब नहीं बना? तो बोला, मैंने कभी इस प्रकार से सोचा ही नहीं. मैं ये सोचता हूं कि मुझे पता चला 2000 रीति से कैसे बल्ब नहीं बन सकता है, तो मैंने तो सीखा। तो इसलिए ऐसे लोग जो आगे बढ़ते हैं इन द रियल सेंस सक्सेसफुल बनते हैं, उन्हें कभी भी लाइफ में फेलियर अनुभव होता ही नहीं है। एक बहुत सुंदर वीडियो है जिसमें आप देखेंगे कि कैसे लोग पॉजिटिव एटीट्यूड से रहते हैं, जीते हैं, और ऐसे नहीं अकेले जीते हैं, दे स्टे विद देयर फैमिली। एक बहन है, चाइनीज है, वो अपनी फैमिली के साथ रहती है, हस्बैंड है, दो बच्चे हैं, वो खुद बिजनेस करती है, हर एक रीति से अपने पैरों पर खड़ी है, लेकिन उनके हाथ नहीं है, दोनों भी हाथ नहीं है, सॉरी। आप देखिए, क्रैब्स, क्रैब्स बेचती है मार्केट में, इसलिए वो क्रैब्स को पहले पकड़ रही है। उसे खुद बोला है कि वो कभी रोई नहीं है, कभी उसको दुख फील ही नहीं हुआ है। उसके हस्बैंड, उसके बच्चों ने कभी कंप्लेन ही नहीं की है उसकी। वो कहते ये नहीं हो गई तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, इतने वो लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अभी घर पहुंच रही है, ताला खोल रही है, कितनी बार तो हमसे चाबी गिर जाती है ना, एक बार में ही ताला खुल जाता है इनका। जैसे अभी राधिका बेन बता रही थी कि यहां स्पिरिचुअल मसल्स कितने स्ट्रांग है। बाहर से आई है ना, तो हम हाथ पैर तो धोएंगे ना। क्यों, उसके बाद उसको बहुत सारा घर का काम करना है। साबुन, कई बार हमसे तो हाथ से भी गिर जाता है। परफेक्ट। अभी देखिए चेहरा भी कैसे साफ करेगी, ये देखो नाक भी पूरा अच्छी तरह से साफ करेगी। बाल कर रही है, लग रहा है जैसे पैरों से कर रही है सर। एकदम नेचुरल। पिन लगा रही है बालों में। बीन साफ कर रही है। See the extent of positive attitude. क्या हम नहीं कर सकते हैं। She loves cooking. कोई भी मसाला मिक्स बना छोड़ेगी नहीं, सब डालेगी। कैसे मुस्कुरा रही है करते करते। देखो ऐसे कुक करना चाहिए ना, एकदम खुशी से। और भी बहुत सारी चीजें थी इसमें। हाँ जरूर जरूर। तो इस प्रकार से हम अगर अपने एटीट्यूड्स पे ध्यान दें, तो जितने वो डीप रूटेड होते जाएंगे ना, उतना हमारे संकल्प, हमारे विचार उससे प्रभावित होंगे। तो सोचिए कि किस प्रकार का एटीट्यूड मेरे अंदर चल रहा है। केवल हमको चेंज करने की आवश्यकता है। ऑब्जर्व करें कितनी बार हमारे में नेगेटिव एटीट्यूड्स चल रहे हैं और हम उसे ट्रांसफॉर्म करें, क्योंकि जब तक एटीट्यूड्स पे कार्य नहीं होगा तब तक मन की स्थिति नहीं बनेगी। अब जब हम कंटेंटमेंट की बात करते हैं, कंटेंटमेंट को हिंदी में हम तृप्ति कहेंगे, क्योंकि एक और शब्द भी है हिंदी में, संतुष्टता, पर कंटेंटमेंट को हम तृप्ति कहते हैं। तो तृप्ति ये मनोवृत्ति है या मन की स्थिति है, क्या कहेंगे? कंटेंटमेंट इज इट एन एटीट्यूड और इज इट अ स्टेट ऑफ माइंड? स्टेट ऑफ माइंड। व्हाट्स द डिफरेंस? राइट, एटीट्यूड तो बदल भी सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, बट द स्टेट ऑफ माइंड परमानेंट, वो सदा रहता है। तो जो व्यक्ति तृप्त है, कंटेंटमेंट है, तो उसमें कभी कंप्लेन न करेगा, न किसी को क्रिटिसाइज करेगा, न किसी के साथ कंपीट करेगा। ये तीन चीजों से वो सदा फ्री रहता है। नो कंप्लेन, नो क्रिटिसिज्म, नो कंपटीशन। कौन सा एटीट्यूड है जो हमें, मतलब मेन मुख्य एटीट्यूड जो हमें इस स्टेट ऑफ माइंड में स्थित करा सकता है? कौन सा ऐसा एटीट्यूड है जो हमें कंटेंटमेंट के मनोस्थिति में स्थित करा सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट वन, बोले होंगे कुछ और भी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, प्यूरिटी और गोइंग फार बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस, कमिटमेंट, एक्सेप्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पहले ही उसको ना कह देते, मुझे ये नहीं चाहिए, मेरी लाइफ में ये नहीं आना चाहिए, मुझे ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। जैसे आपने उसको मना कर दिया ना, वो मनस्थिति रह नहीं सकती है कंटेंटमेंट की। जो व्यक्ति एक्सेप्ट करता है, जैसे एक बैडमिंटन प्लेयर थे, तो उन्होंने जब भी, एक बार उनको कैंसर हो गया तो किसी ने उनको पूछा कि आपको बुरा नहीं लगता, आप कभी अपने आप को ये नहीं बोलते हो कि मुझे ही क्यों ऐसा हुआ है? तो उन्होंने जवाब में कहा कि 5 लाख लोग बैडमिंटन खेलने के लिए तैयार होते हैं, उसमें से 50,000 जो है वो ट्रेनिंग में, प्रोफेशनली ट्रेनिंग में जाते हैं, उसमें से 5,000 जो है वो सिलेक्ट होते हैं, उसमें से 500 जो है वो हाफ वे जो होता है वहां तक वो लोग ट्रेन अपने आप को करते हैं, उसमें से और कम लोग जो है वो विंबलडन तक भी केवल 5 ही लोग पहुंच सकते हैं, उसमें से 2 ही लोग सेमीफाइनल तक रहते हैं, और जब लास्ट में मैं खड़ा होता हूं विद द बिग ट्रॉफी इन माई हैंड, I don't say why me. तो जब ये चीज मेरे सामने आई है तो मैं किस हक से कहूं why me, है ना? और अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल है ना अपना युवराज सिंह का भी, कि इतना मना प्राइडली वो खेलता था ये सब, और फिर अचानक ये सिचुएशन उसकी आई, तो हमने ये तो नहीं सुना कि अभी युवराज सिंह जो है वो क्रिकेट कभी नहीं खेलेगा। He took a short while for himself and then he's back with a bang, है ना? तो इसलिए किसी में भी योग्यता है, कंडीशन यही है कि एक्सेप्टेंस को हम बढ़ाएं। स्पिरिचुअली एक्सेप्टेंस को कहा जाता है टॉलरेंस। टॉलरेंस दूसरा कुछ नहीं है, एक्सेप्टेंस। जो टॉलरेंस को इस प्रकार से कहते हैं ना कि मैंने तो एक बार सहन किया, दो बार सहन किया, अभी कितना सहन करूं, वो एक्चुअली टॉलरेंस है ही नहीं। उसने केवल अपनी फीलिंग्स को सप्रेस किया। एक्सेप्टेंस अगर है टॉलरेंस सही अर्थ में, तो वो तो आप कितनी बार भी करो, जितनी बार आप करेंगे उतनी बार ये मनोवृत्ति और भी मजबूत होती जाएगी, और भी डीप रूटेड होती जाएगी, फिर तो आप कोई भी बड़े चैलेंज के लिए रेडी हो सकते हैं। तो इसलिए मेन एटीट्यूड जो है वो एक्सेप्टेंस का है। दलाई लामा जी ने कंटेंटमेंट के लिए कहा कि वेन यू प्रैक्टिस कंटेंटमेंट, हा जब आप सचमुच उसे प्रैक्टिस करते हो, यू कैन से टू योर सेल्फ, ओ यस आई ऑलरेडी हैव एवरीथिंग दैट आई रियली नीड, है ना, आई ऑलरेडी हैव व्हाट आई रियली नीड। गांधी जी ने भी कहा दुनिया में बहुत कुछ है अपनी जरूरत के लिए, लेकिन अगर लोभ है तो इसका कुछ इलाज नहीं है, बट बाकी दुनिया में बहुत कुछ हम सबके लिए है, जिसको जो जरूरत है मिल जाता है। तो कई लोग इसको भी कंटेंटमेंट कहते हैं। जैसे एक कहावत है ना कि जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाने चाहिए, तो इसको भी कई कंटेंटमेंट कहते हैं। दो रीति से कंटेंटमेंट होती है, एक ये कि जिसे आप बहुत सारी इच्छाओं से आप अपने आप को थोड़ा रोक सको, लेकिन दूसरा कंटेंटमेंट जो यहां हम सीख रहे हैं वो है भरपूरता। आत्मा के जो खजाने हैं उन सब खजानों से अपने आप को भरपूर करो। जितना आप आंतरिक जगत को भरपूर करेंगे क्या होगा, वो मैग्नेट का काम करेगा, और फिर आपको जो जरूरत है ना, कभी भी जिस व्यक्ति की जरूरत है, जो चीज की जरूरत है, जिस स्थान पे जाने की जरूरत है, कुछ पाने की जरूरत है, कुछ शेयर करने की जरूरत है, ऑटोमेटिकली होता जाता है, मांगना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप खींचा चला आता है। और किसी व्यक्ति ने कहा इफ यू ट्रस्ट गॉड तो आप तृप्त रह सकते हो, अगर आप ऐसे भगवान को ट्रस्ट करते हो कि वो मुझे जो जरूरी है ना वही देगा, और अगर उसने अपने आप के पास रखा हुआ है तो इसका कारण यही होगा कि अभी मुझे उसकी जरूरत नहीं या मेरे लिए वो चीज अच्छी नहीं है इसीलिए मुझे नहीं मिली है। नेवर लेट द थिंग्स दैट यू वॉन्ट मेक यू फॉरगेट द थिंग्स दैट यू हैव। मोस्टली हम क्या देखते हैं, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं, ये होता तो बहुत अच्छा होता। उसमें क्या होता है, जितना भी हमारे पास है हम उसकी वैल्यू को कम कर देते हैं, इग्नोर करते हैं, तो उससे फिर क्या होगा, फिर बाजू वाले ने या फ्रेंड ने कोई नई चीज ली तो हम क्या बोलेंगे, ये तो बहुत अच्छी चीज है, हमें भी लेनी चाहिए। जरूरत नहीं होगी। आपने जैनिज्म में सुना होगा अपरिग्रह कहते हैं। अपरिग्रह माना अगर आपको दो जूते की जरूरत नहीं है तो आप एक जूते से चला सकते हैं, पर अगर आपने ये नहीं सोचा और हर एक टाइम आपने, तो आप तो जितने भी जूते लो क्या होगा, कभी भी एक नया जूता दिखाई देगा तो ले ही लेंगे। तो इसीलिए नेवर लेट गो ऑफ व्हाट यू हैव जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट समथिंग। हेलो, यहां हमने जो ज्ञान प्राप्त किया इसमें हमने क्या सीखा, कंटेंटमेंट इज द पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी कंटेंटमेंट इज द पर्सनैलिटी ऑफ इनर ऑथेंटिसिटी, अंदर बाहर साफ, कोई भी झूठ नहीं है आपकी पर्सनैलिटी में, सफाई है, वो कंटेंटमेंट की पर्सनालिटी है। और अगर है तो वो आपके आंखों में, आपके चेहरे से, आपकी चलन से दिखाई देना चाहिए, नहीं तो कैसे कहेंगे कंटेंटमेंट है। साइन क्या है कंटेंटमेंट का, आप खुद से भी सेटिस्फाइड होंगे और दूसरे भी आपसे सेटिस्फाइड होंगे। वो कहेंगे जब भी हम आपके साथ होते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत सीखने को मिलता है, जो एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, कोई भी आपको डेफिनेटली एक रिस्पांस देंगे। तो ये निशानी है कंटेंटमेंट की। कंटेंटमेंट इसीलिए हमें खुशी देता है क्योंकि वो व्यक्ति जो कंटेंटेड है उसके अंदर कोई डाउट नहीं है प्रश्नों के रूप से कि ये मेरे से होगा कि नहीं, कब होगा, कोई मुझे मदद करेगा कि नहीं, मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचूंगा कि नहीं। ये जो डाउट्स अंदर होते हैं ना वो कंटेंटेड सोल के अंदर ये डाउट्स नहीं होते, इज ऑलवेज बियॉन्ड प्रश्न. जो प्रश्न से पार होते हैं वो सदा प्रसन्नचित रहते हैं. तो जो प्रसन्नचित है, कोई होते हैं वो हंसते भी है, रोएंगे भी बहुत इजीली, लेकिन कोई होते हैं प्रसन्नचित रहते हैं. तो वो प्रसन्नचित इसीलिए है क्योंकि अंदर से वो तृप्त है, भरपूर है, उसके अंदर फिर ये प्रश्न नहीं आएंगे. जो कंटेंटेड होता है उसकी एक मुख्य निशानी क्या है कि वो बहुत सारी डिटेल को ना एसेंस में ला सकेगा एक सेकंड के अंदर. कोई बहुत कहानियां सुना रहा है लेकिन उसने तो एक सेकंड में पकड़ लिया कि ये क्या कहना चाह रहा है, इतनी उसकी अंडरस्टैंडिंग ब्रॉड और डीप हो जाती है. और साथ में वो कोई भी प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन इमीजिएटली ला सकता है. तो मुझे तो बिरबल की बहुत याद आई इसमें. मैंने कहा कोई भी कहानी में बिरबल ने कभी दूसरा प्रश्न पूछा ही नहीं. जैसे अकबर राजा ने जो कहा प्रॉब्लम, उसके बोला जी हाँ, माना क्या, उसको कोई प्रश्न ही नहीं उठे मन में. और कभी उनको टेंशन भी नहीं होता था, ऑलवेज स्माइलिंग फेस. और कितने एनिमीज थे बिरबल के तो, लेकिन उनको कभी अफेक्ट ही नहीं होता था. एंड ही डिड नॉट हैव ईगो. सो कंटेंटमेंट इज दैट स्टेट ऑफ माइंड विद इट कैन नॉट बी ईगो. देयर इज सो मच ऑफ हैप्पीनेस इनसाइड दैट यू कैन शेयर विथ ऑल एनी टाइम हाउ मच एवर यू वॉन्ट. सुना? और कोई नहीं ले रहा है तो उसकी प्रॉब्लम है ना, हमारी प्रॉब्लम थोड़ी है. तो इसीलिए बिरबल ने तो अपने एग्जाम्पल से बहुत अच्छा बताया कि कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है. कहां है वो सोल्यूशन? कहां है वो सोल्यूशन? अपने अंदर. और प्रॉब्लम के सार में, प्रॉब्लम के रूट कॉज में सोल्यूशन है. तो बिरबल क्या करता था, प्रॉब्लम के रूट कॉज तक चला जाता था, ये क्यों उत्पन्न हुआ, और वहीं उसको सोल्यूशन मिल जाता था. कई बार हम कंटेंटमेंट को केवल यहां तक ही समझते हैं और हम क्या कहते हैं, आई एम वेरी कंटेंटेड. लेकिन हेड तक समझना माना केवल समझ मिली आपको, यहां भी हमें समझ मिल रही है, इससे मुझे क्या प्रैक्टिस करना है. जब हम प्रैक्टिस कर पाते हैं तब हम कहेंगे दिल से, और कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. रियल कंटेंटेड पीपल आर वेरी साइलेंट. दिखता ही है आपे ही उनकी पर्सनालिटी से. कोई भी सिचुएशन हो, कितना भी कोई अपोज कर रहा हो, भले कोई आपके पास बार बार कोई पिछले कर्मों के कारण हैरान परेशान करने के लिए आता हो, कितना भी आपकी बॉडी में कोई भी प्रकार की सफरिंग हो, आपकी चमक जा नहीं सकती कंटेंटमेंट की. जैसे ये चित्र में दिखाया है ना, पथरीली जमीन है पर ये फूल कितना सुंदर उगा है. जो आंतरिक ये भरपूरता है वो हमें कैसे भी सिचुएशन में मदद करती है. और बहुत अच्छी बात ये है कि वो बहुत लिमिटेड जो डिजायर्स होते हैं ना, कोई भी सिचुएशन है उसमें मैं इच्छा करती हूं, मेरी इच्छा पूरी हो जाए, तो वहां कंटेंटमेंट कार्य नहीं कर सकता है. हमेशा लिमिटेड इच्छाओं से परे जाना है. इच्छाएं तो क्या है, छोटे छोटे गोल्स है लाइफ के, वो तो मिलते ही रहेंगे. पर जो हमारा लक्ष्य है जीवन का, अगर उस पर हमारा ध्यान नहीं है और टोटल फोकस छोटे छोटे गोल्स पे ही है, सारे दिन में भी छोटे छोटे गोल्स बहुत होते हैं, अगर उसी पर ध्यान है और उस पर ध्यान नहीं है कि रात को मैं जब सोने जाऊंगी तब मैं कैसे होंगी, हाउ वुड आई बी, व्हाट शुड आई बी, मुझे क्या प्राप्त करना है आज पूरी जर्नी में सारा दिन, अगर उस पर ध्यान नहीं है और छोटी छोटी बातों के लिए कि हाँ आज मेरा टाइम पे भोजन बन जाना चाहिए, मुझे टाइम पे ऑफिस जाना है, मीटिंग है आज, फलाना है, ये है, ओनली दीज लिमिटेड थिंग्स, तो क्या होगा, दैट कंटेंटमेंट विल नॉट बी देयर. There is so much of tension, there is so much of stress, there is so much of questions. So, इसीलिए फिर वो experience नहीं हो सकता है. So, when a soul is influenced by desires, भले उसके पास सब कुछ होगा, पर contentment नहीं होगा. इससे मुझे याद आता है कि रिच व्यक्ति है और वो गाड़ी में जा रहा है और वहां एक भिखारी है रास्ते में, तो वो क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा कितना देगा उसको? ज्यादा से ज्यादा कितना देगा? 10 रुपया 20 रुपया, उसे ज्यादा देगा? चलो 100, कोई 100 दे देगा. कोई फॉरेनर होगा तो 1000 दे देगा, उससे तो ज्यादा नहीं ना. बाकी है वो मल्टी मिलियनेयर. और एक साधु है जो कपड़े उसने कुछ भी शरीर पर एक लंगोटी के सिवाय कुछ भी नहीं पहना है, ठंडी का मौसम है, उसने एक ब्लैंकेट ओढ़ी है और वो देखता है कि वहीं पर एक व्यक्ति बहुत शिवरिंग हो रही है, उसको ठंडी लग रही है, वो क्या करेगा? उसको लगेगा कुछ? जरा भी नहीं. मानो उसके पास वैसे कुछ ना होते हुए भी सब कुछ है, इसलिए वो ब्लैंकेट भी दे सकता है उस समय. जबकि वो व्यक्ति जिसके पास इतना सारा है तो भी कितना कम चीज वो उससे जा सकती है. जो सचमुच तृप्त है ना, वो कभी भी किसी को ब्लेम नहीं करेगा और भगवान को भी ब्लेम नहीं करेगा. नहीं तो हम सारे दिन में या कितनी बार लाइफ में ब्लेम करते हैं, भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? यू वेरी पार्शियल, आपने इसको इतना दिया, मेरे को तो किया ही नहीं, मैंने तो इतना इतना आपके लिए किया है, पूजा की है, ये की है, वो दिया है, वो किया है. कभी ब्लेम नहीं करेंगे. क्यों? क्यों ब्लेम नहीं करेंगे? क्योंकि उसके पास आंसर्स भी है, उसके पास वो क्लैरिटी है कि ये चीज क्यों हो रही है. और अगर समझो उसके पास वो क्लैरिटी नहीं है कि ये चीज क्यों हो रही है, तो वो क्या करता है? वो सोचता है कि जो होना होगा या जो होना था वही हुआ है, इससे अधिक अभी होना नहीं था. इसलिए जो उस समय मिलता है उससे ही वो तृप्ति का अनुभव करते हैं. जो तृप्त नहीं होता है उसको सदा कैसे फील होता है? माइंड एकदम हैवी रहता है, बहुत हैवीनेस होती है, इतने थॉट्स आते रहेंगे, उसकी इच्छा के विरुद्ध भी थॉट्स आते रहेंगे, फिर उसको कैसे फील होगा? जैसे एक बोझ है इतने सारे विचारों का. जब आप एक बोझ लेके चलते हो ना, तो खुशी होगी? बिल्कुल नहीं हो सकती. इसलिए जो तृप्त व्यक्ति है वो कहीं भी जाए, कोई भी कार्य के लिए जाए, सदा लाइट रहता है. आज आपको कैसा लग रहा है? लाइट लग रहा है कि बर्डन लग रहा है, हैवीनेस? सुबह से इतना सुन रहे हो, सुबह से इतना सुन रहे हो, हैवीनेस नहीं है ना? क्यों नहीं है? एक्चुअली लिसनिंग पावर तो मैक्सिमम 40-45 मिनट्स का ही होता है, उसके बाद तो हम लिसन भी नहीं कर पाते हैं. लेकिन आप ज्यादा कब सुन सकते हो? जब आप लाइट है, कोई हैवीनेस नहीं है, आपने वो सारे विचार वहीं छोड़ दिए हैं. और राधिका बहन ने बताया ना कि यहां बैठ के आप वो सारे विचार करेंगे तो उसको कौन से विचार बोले जाएंगे? वेस्ट थॉट्स, कोई काम के नहीं. पर आपने अभी ठान लिया है कि हम इधर आए हैं तो अभी वहां के विचार हमको नहीं करने, तो यू फील वेरी हैप्पी. सो वी आर एज हैप्पी एज वी चूज टू बी, है ना? चॉइस है ना कि वी विल गेट अ चांस. आपको क्या लगता है, चॉइस है कि चांस है? एक बार एक व्यक्ति था रेस्टोरेंट में मैनेजर, कभी उदास नहीं होता था, कभी उसको गुस्सा नहीं आता था, कभी किसी की कंप्लेन नहीं करता था. तो उसके साथ जो दूसरे वेटर्स और दूसरे कार्यकर्ता थे वो हमेशा सोचते थे, ऐसा कैसे हो सकता है, कभी भी थोड़ा भी अपसेट नहीं रहता है. तो फिर और जब भी वो एक होटल छोड़ के दूसरे में जाता था ना, तो बाकी सब भी उसके साथ वहीं दौड़ जाते थे क्योंकि हमेशा उनसे वो उनको काउंसलिंग मिलती थी। कोई भी अपसेट होगा ना तो उसके पास चला जाएगा, तो वो क्या करता था, एक पॉजिटिव अप्रोच देके उसको कुछ और बताते थे, तो वो चेंज हो जाते थे, वो अपसेट रहते नहीं थे, तो दे वुड लाइक टू बी विथ हिम। फिर एक तो किसी ने पूछा कि आप ऐसे कैसे रह सकते हो, तो उसने कहा बिकॉज आई मेक अ चॉइस, रोज सुबह उठता हूं, मैं अपने आप को पूछता हूं कि शुड इट बी अ हैप्पी डे फॉर मी टुडे और शुड इट बी नॉट वेरी हैप्पी डे, कि मैं कैसे रहना चाहता हूं, शुड आई बी हैप्पी टुडे और नॉट, कि आई विश टू बी हैप्पी, वुड आई लाइक टू बी पॉजिटिव और नेगेटिव टुडे, आई वुड लाइक टू बी पॉजिटिव। जैसे मैं सोच लेता हूं, निर्णय लेता हूं ना, तो फिर ऐसे ही सारे दिन में हर एक चीज का रिस्पॉन्स मेरा ऐसा रहता है, तो इसलिए मैं कभी अपसेट नहीं। एवरी डे इन द मॉर्निंग आई मेक अ चॉइस, वॉट इज देयर फॉर मी टूडे, हाउ आई वुड लाइक टू बी। तो एक बार एक रेस्टोरेंट में, उसी रेस्टोरेंट में रात का टाइम था और तीन चोर घुस आए और उसने भूल से ना पीछे का दरवाजा जो है वो खुला रख दिया था। तो जब तीनों चोर घुस आए तो उनके पास तो गन्स वगैरह सब थी, तो तुरंत उन्होंने कहा कि अभी आप कैश सारा दे दो। तो वो थोड़ा उस समय नर्वस हो गया था, तो उसमें वो जो चाबी थी कैशियर बॉक्स की या वो जो नंबरिंग देखना पड़ता है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई और चाबी नीचे गिर गई। गिर गई तो उसमें वो लोग भी डर गए, तो इसको शूट कर दिया है समझ के कि शायद ये कुछ और करने जा रहा है हमको। तो फिर उसको तीन गोलियां तुरंत मार दी, फिर तो उसको कुछ याद नहीं था, फिर तो हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। और फिर जब ऑपरेशन हो गया और उसका फ्रेंड उसे मिलने गया, तो उसने कहा कि आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क वन क्वेश्चन टू यू। बोले क्या, तो कि उस समय जब तुमको गोली मारी तब तुमने क्या सोचा? तो उसने बोला सबसे पहला विचार तो मुझे ये आया कि मैंने भूल से दरवाजा खुला छोड़ दिया था, इसीलिए चीज हुई है। फिर मैंने सोचा अच्छा अब मुझे क्या करना है, व्हाट इज माय चॉइस, डू आई वांट टू लिव और वुड आई वांट टू डाई। फिर उसने चूज किया आई वांट टू लिव। फिर जब हॉस्पिटल में सारे लोग लेके जा रहे थे, द पैरामेडिकल स्टाफ, वो लोग सारा टाइम उसको वही बोल रहे थे, डोंट वरी यू विल गेट वेल, डोंट वरी यू विल गेट वेल। हाँ, तो मुझे इतने पॉजिटिव वाइब्स आ रहे थे। और फिर जब वे अंदर मुझे लेके गए तो जो मेन नर्सेस खड़ी थी और असिस्टेंट्स खड़े थे और वो और डॉक्टर्स, उनके फेस बहुत सीरियस थे, लाइक यू नो एज इफ दे आर गोइंग टू ट्रीट एंड ऑपरेट अ डेड मैन। तो तब मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, आई हैव टू डू समथिंग अबाउट दिस। तो फिर किसी ने उसको पूछा आर यू एलर्जिक टू एनीथिंग, जोर से पूछा। तो उसने कहा यस, तो वो लोग ध्यान से सुनने लगे, आई एम एलर्जिक टू बुलेट्स, मुझे गोलियों से एलर्जी है, प्लीज निकालो जल्दी, डोंट ट्रीट मी लाइक अ डेड मैन। फिर ऑपरेशन हुआ, कितने घंटों का ऑपरेशन हुआ, कितने महीनों के बाद वो रिकवर हुआ। तो मना उसने कहा कि यू नो इट्स जस्ट अ थॉट दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, जब आप चूज कर लो ना तो देन यू कैन ऑलवेज कम बैक टू व्हाट यू आर, यू कैन ऑलवेज रिकवर योर एनर्जी। कंटेंटमेंट, किसी ने कहा बहुत अच्छा थॉट था, टू मेक गुड यूज ऑफ व्हाट यू हैव, कितनी अच्छी बात है, आपके पास जो है उसका अच्छे से अच्छा उपयोग करो। एंड लेट गो ऑफ व्हाट यू डू नॉट यूज, लेट गो, नहीं है ना, और किसी के साथ शेयर करो, नहीं चाहिए तो जस्ट लेट गो, और नहीं है तो जस्ट लेट गो दैट थॉट। अगर वो थॉट अंदर घिर गया ये चीज मुझे चाहिए, तो पाने के बगैर आप जाएंगे नहीं, और फिर आप कोई भी तरीके से उसको पाना चाहेंगे, देन देर इज नो गुड वे, देर इज एनी वे। एक बार एलिस इन वंडरलैंड की स्टोरीज होती थी ना, तो उसमें बताया है कि एलिस जो है वो एक सपने में वो चूहे के डर में घुस जाती है अब चूहे की दर में घुसती है ना, तो वहां पर बहुत सारे पैसेजेस मिलते हैं उसको, और वहां एक बड़ा मोटा सा चूहा बैठा होता है। तो एलिस वो चूहे को पूछती है कि मैं कहां जाऊं, तो चूहा कहता है पहले ये तो बताओ तुमको कहां जाना है, तो मैं बताऊं कौन से पैसेज से जाना है। अगर तुमको पता ही नहीं है कि तुमको कहां जाना है तो कोई भी पैसेज ले लो। तो हम भी क्या करते हैं, इफ वी आर नॉट स्पेसिफिक अबाउट व्हाट वी वांट टू अटेन, तो हम कोई भी रास्ते पर चले जाते हैं, और लिमिटेड डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए तो सचमुच हम कोई भी रास्ते पर चले जाते हैं। तो इसीलिए इफ यू कैन लेट गो ऑफ व्हाट यू डू नॉट, व्हाट यू डू नॉट यूज, जस्ट लेट गो ऑफ इट, यू विल ऑलवेज हैव अ कंटेंटेड लिविंग। इट्स अ ग्रेट वर्च्यू। सबसे पहले वो शायद किसी का भी अटेंशन नहीं खींचे, हमने देखा है ना, कई लोग ऐसे लोगों को माने दरकार ही नहीं करते हैं, कहते ये तो अपने वाले नहीं है छोड़ दो इनको। लेकिन वही जो है ना, क्योंकि वो लोग बहुत शांत रहते हैं, वो अपनी कोई ऐसी बात नहीं करेंगे, पर ऐसी कंपनी में रहना क्यों हमते को आनंद देता है, क्योंकि वो लोग सदा फुल होते, भरपूर होते हैं, पीसफुल होते हैं। जब जब वही व्यक्ति जो उसके पास नहीं आता है, जो उसके लिए नहीं केयर करता है, जिस दिन ना वो बहुत लो होगा ना, उसको लगेगा मेरा कोई नहीं है, तो उसे वही व्यक्ति याद आएगा, मैं उसके पास जाऊं, मुझे जो चाहिए उसी के पास से मुझे प्राप्त होगा। तो इसीलिए इट्स अ वेरी वेरी ग्रेट वर्च्यू। जैसे कई टॉलरेंस को भी वर्च्यू नहीं समझते हैं, पावर नहीं समझते हैं, कहते ये तो बहुत कावर्डनेस है, जो जिनके पास ताकत नहीं होती है ना वही चुप रहते हैं, वही टॉलरेट करते रहते हैं, जिनके पास ताकत है ना वो तो बराबर अपनी फाइट करेंगे। ऐसे कंटेंटमेंट के लिए भी कई लोग जो है ना वो वर्च्यू नहीं समझते। हमको कई बार सेंटर पे आके कहते हैं अगर बहन जी हम कंटेंटेड हो जाएंगे तो फिर हम ऊंचाई को कैसे पहुंचेंगे, हम मेहनत कैसे करेंगे, तो ये तो करना ही पड़ेगा ना संसार में रहते हुए। सो इट्स अ कंप्लीट रॉन्ग नोशन कि कंटेंटमेंट माना जो है चुपचाप बैठ जाओ। ऐसे तो कभी दुनिया बढ़ ही नहीं सकती है, दुनिया तो बढ़नी ही है, बट आज दुनिया जो बढ़ी है, रतन मोहिनी दादी ने कितना प्यार से समझाया कि रूप क्या ले लिया दुनिया ने, तो ऐसा रूप हमको नहीं चाहिए ना जहां घर घर में दुख हो। तो इसके लिए कंटेंटमेंट इज अ वेरी वेरी ग्रेट वर्च्यू। इट्स नॉट हैप्पी पीपल हु आर थैंकफुल, बट इट इज द थैंकफुल पीपल हु ऑलवेज रिमेन हैप्पी। जो कंटेंटेड होते हैं ना वो किसी के भी ग्रेटिट्यूड को भी कभी नहीं भूलते हैं, ऐसे ही बस अपने आप में जी रहे हैं, किसी ने उनके लिए कोई अच्छी बात की होगी ना, दे फील वेरी वेरी ग्रेटफुल। तो इसीलिए जो थैंकफुल होते हैं लोग वही सदा खुश रहते हैं। तो इस प्रकार से आज हम ये जरूर थॉट अपने अंदर ले, एक प्रैक्टिस करें, एक एक्सपेरिमेंट करें सारे दिन में, कि जब भी मैं ये प्रैक्टिस करें, आई एम अ कंटेंटेड और आई एम अ ज्यूअल ऑफ कंटेंटमेंट, करें दो मिनट प्रैक्टिस करें, फील करें उसको, जैसे थोड़ा सीधा बैठ जाए। और जो अभी हमने सुना है वो कहीं बाहर से आने वाला नहीं है, वी हैव टॉक्ड अबाउट समथिंग दैट इज एब्सोल्युटली विद इन अस। तो अपने भीतर एक बहुत चमकीला डायमंड देखिए आपके मन के नेत्रों से। ये डायमंड की जो चमक है ना वो है तृप्ति, कंटेंटमेंट, अपने आप को कहिए आई एम द ज्यूअल ऑफ कंटेंटमेंट। I sparkle with all the treasures lying within me. I share this light with all around me, with anyone that I come in front of, and even with those who may not want me, who may ignore me, who may hurt me or oppose me. Because nothing can affect or change this sparkle of mine. It's not something that I can change according to situations. This is what I am. And so I accept freely, without any hesitation, any situation that comes to me. As it is more like a gift to me. It has come to give me something very, very valuable in life. And all those whom I come in contact with or in relationship with is not new. Somewhere in the past, I have already been with them, shared some good or maybe not so good memories. So let me let go of what is not so good and just take in the good memories and change my perception. I am fortunate to move towards a higher destiny. And so there is no doubt, no question. There's only happiness in my heart. Om Shanti. Thank you very much.
Om Shanti, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करीना बेन. आज के इस टॉपिक को कैसे हमको संतुष्ट रहना है इसके ऊपर रोशनी डाली, हम सबको इसके बारे में क्लैरिटी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया.